अकबर। तो आप ऐसा करें, तिजारत एक तरफ लिखें और सूद दूसरी तरफ लिखें, दो कॉलम्स बनाएं और एक कॉलम में लिखें कि तिजारत में क्या होता है, दूसरे में लिखें सूद में क्या होता है। ठीक है, आप देखें, ये बजाहिर तो बात ऐसे कहते थे कि हाँ देखें वाकई इंसान सोचता है, हाँ वाकई वो भी तो $10 की चीज लेके 20 की बेचता है, तो वो भी तो फिर रिबा ही हो गया। तो इसमें क्या बात है कि किसी ने किसी को कर्ज दिया, उसको कह रहा है मुझे मैंने 10 तुम्हें डॉलर दिए, तुम्हें मुझे 20 चाहिए वापस, तो इसमें क्या बात है। तो नहीं, तिजारत में इंसान का रिस्क होता है, हमेशा तो मुनाफा नहीं होता। कौन सा ताजर है, किसी बिजनेसमैन को पूछे, कौन सा बिजनेसमैन ऐसा है जो कहता है कि 100% मुझे हमेशा प्रॉफिट ही होगा। मगर सूदखोर को हमेशा फायदा ही फायदा होता है, ऑलवेज, कभी भी उसको नुकसान का खतरा है ही नहीं। वो कुछ भी नहीं उसने करना, बस उसने पैसे दिए, अब उसको पता है कि मैंने 10 दिए तो मुझे 20 मिलेंगे। अच्छा, फिर तिजारत में कभी भी फिक्स्ड प्रॉफिट की जमानत नहीं होती, सूद में हमेशा फिक्स्ड प्रॉफिट की जमानत होती है। वो सूद पे देते हैं ना चीजें, यहाँ पे कहते हैं कि 5% इंटरेस्ट के ऊपर है, ये 10% इंटरेस्ट पे है। कौन सी तिजारत ऐसी है जिसमें वो कहें कि मुझे इतना ही मुनाफा होगा, मेरे इस महीने, आप जो बिजनेस वाले लोग हैं वो बताएं किस महीने, आप महीना स्टार्ट करते हुए कहते हैं इस महीने मुझे 10% प्रॉफिट होना है, क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं। तिजारत में नंबर 3 पॉइंट लिखे, तिजारत में मेहनत लगती है, वक्त लगता है, आपकी जहानत लगती है। सूद में कुछ भी नहीं लगता, ना कोई मेहनत है, ना कोई वक्त है, ना कोई जहानत है, कुछ भी नहीं लगेगा। तो तिजारत में क्या है, इंसान यानी कि एक्टिविटी होती है, सूद में क्या है, बेकारी। जैसे बाज लोग बेकार रहना पसंद करते हैं ना, तो किसी से पूछा गया कि आप क्या चाहते हैं, वो कहते हैं बस मैं ये चाहता हूं कि मैं इतना कमा लूं, उसके बाद बैंक में रख लूं और फिर आराम से बैठ के खाऊं। तो सूद क्या करता है, बेकारी। ठीक है, सूद के अंदर कभी भी, सूद के अंदर कभी भी इंसान को फायदा यानी एक्टिविटी करने का नहीं जरूरत पड़ती, मेहनत करने की नहीं जरूरत पड़ती। तिजारत में सिर्फ एक ही बार फायदा होता है, जबकि सूद में क्या होता है, मुसलसल फायदा होता रहता है, मुसलसल कंटिन्यूस फायदा। ठीक है, एक दफा होता है ना तिजारत, सूद में क्या होता है, और मैं अब उसे नहीं दिया गया तो अब वो और रेट बढ़ा दिया, और रेट बढ़ा दिया, पहले 10% के ऊपर वापस देना था, अब उसके बाद 12% हो गया, अब उसके बाद 15% है। मेरे ख्याल में उसको सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं, शायद जो फाइनेंस वाले लोग हैं उन जानते होंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट शायद वो होता है कि वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, पहले 10 के 20 देने थे, फिर 10 के 25 देने हैं, फिर 10 के 50 देने हैं, इस तरह से। तो इस तरह से इस चीज के अंदर यानी तिजारत में अगर दो लोग शामिल हो ना, तो दोनों नफा नुकसान में शामिल होते हैं, जबकि सूद में जो कर्ज लेने वाला है वो ही सारे लॉस का जिम्मेदार है, अगर उसको कितना भी नुकसान हो जाए। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने किसी से कर्ज लिया, अब उसने जाके किसी बिजनेस में लगाया, मिसाल के तौर पे 1 लाख कर्ज लिया था, बिजनेस पे लगाया, बिजनेस गया डूब, अब कर्ज देने वाला उसके लॉस में शामिल नहीं है। याद रखें, यही रिबा होता है कि वो ना प्रॉफिट ना लॉस में किसी में शेयर नहीं करता। तिजारत में जब दो लोग ट्रेड करते हैं मिलके, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं हम प्रॉफिट लॉस दोनों में शेयर होता है ना, दोनों को मुश्किल होती है। अगर एक स्लीपिंग पार्टनर भी है, वो अपनी एनर्जी नहीं भी लगा रहा, लेकिन उसने जब पैसा लगाया, तो अगर पैसा डूबेगा तो दोनों का ही डूबेगा। लेकिन इसमें सूद में क्या होता है कि सूद देने, कर्ज देने वाले को कभी भी नहीं, मैंने आपको बताया ना, कभी भी नहीं उसको नुकसान होता। वो ही डजंट केयर कि दूसरे का सारा ही माल, वो जो 1 लाख लगाया था, सारा का सारा ही डूब गया, उसको बस 1 लाख 10 ही चाहिए वापस। तो वो लॉस में कभी शेयर नहीं करता, ना प्रॉफिट ना लॉस में, वो कहता है बस मुझे इतनी फिक्स्ड अमाउंट चाहिए। तिजारत में ऐसा नहीं होता, प्रॉफिट लॉस शेयर होता है। तिजारत से माल की सर्कुलेशन होती है, सूद से एक एक बंदे के पास जमा हो जाता है, एक ही बंदा ना जो देता है ना, वो ही अमीर से अमीर होता जाता है, क्योंकि उसको हमेशा ही फायदा होगा ना। देखें, जो देने वाले उसको हमेशा फायदा होगा, वो अमीर होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, और एक बंदा पिसता जा रहा है पिसता जा रहा है पिसता जा रहा है। एक तो उसको वापिस करना है तो सूद समेत करना है, अगर उसको प्रॉफिट हुआ है, हो सकता है 10% प्रॉफिट ना हुआ, 5% हुआ, 5 वो अपनी जेब से देगा, किसी महीने हो सकता है कोई भी ना फायदा हो, फिर भी अपनी जेब से निकाल के देगा। तो वो तो गरीब ही होता जा रहा है और एक अमीर ही होता जा रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि बॉडी जो है, जैसे ये आपकी बॉडी है, इसके अंदर ब्लड सर्कुलेट करे तो तब आप हेल्दी रहते हैं, या एक जगह जम जाए तो तब हेल्दी रहते हैं? सर्कुलेशन चाहिए ना। इसी तरह वेल्थ की भी सर्कुलेशन चाहिए होती है कंट्री में। अगर वेल्थ सर्कुलेट करेगी तो तब फायदा होगा, और अगर सारा सरमाया सारा पैसा चंद हाथों के अंदर आ जाएगा तो बैलेंस नहीं रहेगा सोसाइटी के अंदर। वहां पे क्राइम भी होगा, चोरी डाके, क्योंकि हैव और हैव नॉट के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है, सारा कुछ है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास कुछ भी नहीं। आज अपने ममालिक का हाल देखें, वहां पे क्या चल रहा है, ऐसे ही है ना। और कुछ कंट्रीज भी ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे मुल्कों को सूद के ऊपर दिया हुआ है, और फिर उसके बाद वो इसी तरह उनका खून चूसते हैं। अब उन कंट्रीज को आपको पता है वो कौन कौन से मुल्क हैं जो बड़े बड़े ममालिक हैं, फिर आप सोचते हैं वहां पे तो बड़ी खुशहाली है, वहां पे तो बड़ी अच्छा है। तो बात यह है कि फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बस्ती हो जहां पे आदमखोर लोग रहते हो, आप जाके वहां पे देखें, सारे ही आपको मोटे ताजे नजर आएंगे, लेकिन आप कभी उसको अच्छा कहेंगे? दूसरी बस्ती में जाएं, वहां पे देखें सारे स्केलेटन्स पड़े हुए हैं, मुर्दा लोग पड़े हुए, क्योंकि इन्होंने, जो पहली बस्ती वाले हैं, उन्होंने इनको खा लिया। आप क्या कभी इंसाफ समझेंगे, इसको अच्छा समझेंगे? बिल्कुल यही हाल है वो लोग जो कर्ज देते हैं सूद के साथ, वो समझ लें खा रहे हैं उनको। एक तरफ कुछ लोग हैं जो, कुछ मुल्क हैं जो बिल्कुल पिस चुके हैं, और एक तरफ वो हैं जो मोटे ताजे होते जा रहे हैं। अब इस मोटे ताजे होने को भी कोई हेल्थी ना समझे, इसलिए कि ऐसे ही है जैसे कि एक इंसान है ना, वो स्वेलिंग उसके ऊपर हो जाए, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग हो जाए, तो आप क्या उसको अच्छा समझेंगे? नहीं, वो तो बुरी है ना। तो वो फूल जाना उसका ये नहीं है कि ये अच्छाई है, ये बुराई है, ये बीमारी है। तो ये सूद भी ऐसी चीज है। तो सूदी निजाम में, जहां पे भी सूदी निजाम होगा, वहां पे बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा माशरे के अंदर, लोगों के उसमें वेल्थ के अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो सूदखोर हमेशा मेहनत करने की बजाय बैठ के रहना खाना पसंद करता है, बेकारी की फिजा पैदा हो जाती है माशरे में। और तिजारत वाला देखिए मेहनत कर रहा है, मुशक्कत कर रहा है, कुछ लगा रहा है। और बाकी आप इसके डिफरेंसेस लिख लें और भी, कि क्या फर्क है, या आप अपना होमवर्क समझे। लेकिन सबसे बड़ी एक बात क्या है, वह अहल्लल्लाहुल बैआ व हर्रम रिबा। हम कोई भी पॉइंट ना लिखें तो क्या एक पॉइंट काफी नहीं है, कि बस सब चीजों के ऊपर एक चीज ने मुहर लगा दी, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया और सूद को हराम किया। तुम्हें कुछ भी नहीं समझ आता ना, कि क्या फायदा है, ये क्या डिफरेंस हुआ जी, एक ही बात तो हो गई, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बात तो सेम ही है जी। नहीं, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया, सूद को हराम किया। अब बात ही यहां पे जाके खत्म हो जाती है, अब इसके आगे कोई क्वेश्चन रह ही नहीं जाता, क्योंकि जिस चीज को, क्या एक मोमिन के लिए क्या इतना काफी नहीं है कि मेरा अल्लाह ने हलाल कर दिया एक चीज को, तो बस वो हलाल है, और एक चीज को हराम कर दिया, अब हम उसको हलाल नहीं कर सकते? तो एक चीज मुमकिन है, अल्लाह के यहां हराम हो और इंसान सोच रहे हो कि इसके अंदर बड़ा फायदा है। आज बाज लोग इसके ऊपर बड़ी दलीलें देते हैं कि नहीं जी, सूद की वजह से तो ये हो रहा है, सूद की वजह से तो फलाना हो रहा है और ऐसे हो रहा है। याद रखें, एक तो सबसे पहली बात यह है कि अल्लाह ताला का हर हुक्म हिकमत पे मबनी है, राइट? हम ये सब जानते हैं ना, हिकमत है उसके अंदर। और हम ये नहीं कह सकते कि ये तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दे दिए, नहीं, हमें शायद उसका फायदा सामने नजर ना आ रहा हो, हमें शायद हमारी अकल, फिर अपनी अकल पे ही मातम करें कि मेरी अकल इतनी नहीं है। आप देखें इस तरह तो आप कहें चोरी का भी तो फायदा है, डाके का भी तो फायदा, देखें कुछ घर तो चल ही रहे हैं ना उसकी वजह से भी, लेकिन हर कोई कहेगा नहीं इसमें नुकसान है, ये बुरी चीज है, ऐसा ही है ना। तो अल्लाह ताला ने जिन चीजों को हराम करा दिया ना, शराब के बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इसमें लोगों के लिए कुछ नफा है मगर इसका गुना बहुत बड़ा है, हमने पढ़ा है ना ये। तब इस वजह से हम ये तो नहीं कह देंगे कि नफा तो है ना कुछ, ये नहीं कह सकते हम। कोई भी चीज, सांप वगैरह जो है ना, इनका भी कुछ ना कुछ तो फायदा है ही दुनिया इसमें, इस कायनात में अल्लाह ताला ने हर चीज के कोई फायदे तो बनाए ही हुए हैं ना, कोई चीज भी बेफायदा तो है नहीं। तो अब आप इस तरह से लेके बैठे हैं, आप कहें कि इसमें भी फायदा है उसमें भी फायदा है, तो सूद खोर को का भी हमें कुछ वक्ती फायदा एकदम से नजर आता है कि हाँ देखिये इसका भी तो घर चल रहा है इससे, लेकिन दुनिया का भी और आखरत का भी इतना बड़ा नुकसान है कि वो इस फायदे के मुकाबले में जो है ना वो बहुत बड़ा है और हमेशा का है। ठीक है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने हलाल किया, और अल्लाह ताला अपने बंदों से जितनी मोहब्बत करता है ना 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। ऐसे रब से आप क्या ये चीज की तवक्को कर सकते हैं कि वो आपके फायदे की चीज को तो आपसे रोक दे और फायदे की चीज को हराम कर दे? नहीं, कभी भी नहीं। तो मोमिन के लिए तो समय ना हुआ था ना, मोमिन के लिए तो कोई मुश्किल ही नहीं है, वो तो कभी भी आर्ग्यूमेंट करेगा ही नहीं, बस अल्लाह ताला ने जब फरमा दिया हराम रिबा, रिबा हराम है, तो अब इसके बाद क्या बात है। लेकिन मसला यही है कि जैसे यहूद ने कई चीजें जो उनके ऊपर हराम थी वो हीले करके, बहाने करके, एक्सक्यूजेस करके और उनको हलाल कर लिया अपने लिए कि नहीं ये तो इस तरह है, सब्त वालों का किस्सा आपने पढ़ा है, इसी तरह आज मुसलमानों ने हलाल कर लिया। फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिह, तो जो कोई आ जाए इसके पास एक नसीहत उसके रब की तरफ से, जब नसीहत आ पहुंची है उसके रब की तरफ से, ये बात आ चुकी है कि अल्लाह ने हराम कर दिया है, तो अब इसके बाद क्या है? फलहु मा सलफ, तो उसके लिए जो गुजर चुका, जो हो चुका वो तो हो चुका, अब जो उस हो चुका है उसके ऊपर तौबा करे, अब वो तो गुजर चुका है, वो नहीं कहा गया कि अभी वो वापस दो, नहीं वो तो जो खा चुके अब वो गुजर चुका है। वह अमरुहु इलल्लाह, उसका मामला अल्लाह की तरफ है, अल्लाह ताला चाहे क्यामत के दिन माफ कर दे, चाहे तो पकड़ ले उसके ऊपर, लेकिन जो रुक जाए इसके बाद उसके लिए जो गुजर चुका है बस वो हो चुका है, जो खाया वो हो गया, अब आखरत में इसका फैसला होगा। वह मन आदा, और जो कोई लौटे, जो कोई फिर भी बाज ना आए, फाउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून, वो आग के साथी हैं, आग वाले हमेशा रहने वाले हैं इसमें। कितनी बड़ी सजा की तरफ बात की गई, ये नहीं कहा गया कि जो काफिर हैं और ये करें, काफिरों के लिए तो देखें ये अहकामात है ही नहीं, ये किसके लिए? मुसलमान के लिए है ना, कुरान मुसलमान के लिए ना उतर रहा है ना, यहाँ ये लदीना आमनू भी आगे आया, काफिर तो कहता ही नहीं है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ, इसलिए उसके तो बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है एक ऐसे बंदे की जो अपने आप को मोमिन कहता है। तो वो मोमिन जो है फिर दोबारा यही काम अगर करेगा तो वो उस आग के साथी हैं, हमेशा वहां रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबे मेराज में कुछ लोगों को देखा था जिनके पेट बड़े बड़े घरों की तरह, पूछा ये कौन लोग हैं, बताया गया सूद लेने वाले, और एक रिवायत में ये है कि उनके पेटों में सांप भरे हुए थे जो उनको डसते जा रहे थे। आप सोचें इंसान ये नहीं बर्दाश्त कर सकता कि एक कमरे के अंदर सांप आ जाए या एक घर में आ जाए ना, देखा भी नहीं हो इंसान ने तो उस घर के अंदर नहीं खड़ा होगा, बाहर भाग जाएगा, और कहां किसी के पेट के अंदर सांप, छोटे छोटे कीड़े हो जाए ना किसी के पेट में तो वो चैन नहीं लेने देते, और कहां सांप भरे में हो पेट में जो उसको डस रहे हैं। और एक हदीस में ये है कि जो मेराज की ही हदीस है कि हम जब एक सुर्ख रंग की नहर पर पहुंचे ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब एक सुर्ख रंग की नहर पर पहुंचे जिसका पानी खून की तरह था सुर्ख, तो मैंने देखा उसमें कुछ लोग हैं, मुश्किल से वो किनारे पे आते हैं, वो यानी कुछ लोग हैं वो उस नहर के अंदर हैं, खून की जैसी जो नहर है। तो एक फरिश्ता बहुत से पत्थर लेके बैठा हुआ है, वो उनका मुंह फाड़ के एक पत्थर उनके मुंह में उतार देता है, वो फिर भागते हैं, फिर यही होता है, फिर वो किनारे पे आने के लिए निकलने के लिए कोशिश करते हैं, तो जब वो करीब आते हैं ना तो वो फरिश्ता पत्थर उनके मुंह में डाल दे। तो पूछा ये कौन लोग हैं, बताया गया ये सूद खोरों का ग्रोह है, इन पे ये वबाल इसीलिए ना कि ये देखें रिबा को हराम समझते ही नहीं थे। देखिए ना समझने का क्या नुकसान होता है, किसी भी गुनाह को गुनाह अगर आप नहीं समझते और आप आर्ग्यूमेंट करते हैं नहीं जी ये तो इस्लाम के अंदर ऐसे नहीं, नहीं जी ये तो उस जमाने के अंदर होता था, नहीं जी आज ये, चाहे आप सूद का मामला ले लें चाहे किसी और चीज का भी, अगर आप ये समझते हैं कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है और कुरान में वो है, लेकिन आप उसको खुद दलीलें दे के तावीलें करके ऐसे ऐसे लोगों के फतवों के पीछे जाते हैं जिनका आपको पता है कि ये इस चीज को जायज कर देंगे, हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया अपने दिल से फतवा पूछ लो, तो लोग चाहे जो भी फतवा देते हैं। तो अगर आप किसी हराम चीज को हलाल करने की कोशिश करते हैं ये इतना सख्त बड़ा गुनाह है, इसलिए कि एक तो वो बंदा कभी भी उस गुनाह को छोड़ेगा नहीं क्योंकि वो उसको बुराई नहीं समझता, हलाल समझता है ना, हलाल समझ के कर रहा है, हराम समझता ही नहीं। तो एक तो उसने अल्लाह के कानून को डिनाई किया, अल्लाह के कानून को का इनकार किया, अल्लाह की आयात का इनकार किया, ठीक है। नंबर टू क्या बात है कि उस इंसान को तौबा की भी तौफीक नहीं मिलती, तौबा कर ही नहीं पता कि तौबा किस बात पे करे, ये तो हलाल है तौबा क्यों करूं। तो ये एक यानी एक तो गुनाह करना ऊपर उसे उसके ऊपर इसरार करना, ये एक और डबल गुनाह हो गया। तो कभी भी कोई गुनाह कर रहा हो इंसान तो उसके ऊपर नादिम रहे, शर्मिंदा रहे, उसके ऊपर उसके दिल के अंदर गिल्ट रहे, उसके ऊपर तौबा करता रहे, उसके ऊपर शर्मिंदा होता रहे, ये नहीं है कि उसके ऊपर ढीठ बन के आगे से ये कहना शुरू हो जाए नहीं ये तो है ही नहीं। तो ये असहाबुन्नार हैं। और इसके अलावा भी अहादीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यानी ये इतनी बड़ी बात है कि सूद के 73 गुनाह हैं जिसमें से सबसे हल्का गुनाह ये है कि इंसान अपनी मां से बदकारी करे, सबसे हल्का, इतनी बड़ी बात है। लेकिन ये ऐसी बड़ी बड़ी तो किसी गुनाह पे भी नहीं आई। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 बड़े गुनाहों से बचो, कबीरा गुनाह जो होते हैं ना कबीरा गुनाह, उनमें 7 बड़े गुनाहों से बचो, और उनमें एक बड़ा गुनाह कौन सा है, यहाँ पे शिर्क की बात आती है यहाँ पे, और वहां पे क्या है सूद खाना। ये 7 मोहलिक गुनाह हैं जो हलाक कर देने वाले हैं, जो इंसान की हलाकत का बायस बनने वाले ना वो हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 आदमी ऐसे हैं कि उनके बारे में अल्लाह ताला ने अपने पर लाजिम कर लिया कि उनको कभी जन्नत में दाखिल नहीं करेगा और जन्नत की ना नेमतें चखने देगा। कौन है? शराब का आदि, सूद खाने वाला, यतीम का माल ना हक खाने वाला, और वालदैन की नाफरमानी करने वाला, इनको जन्नत में नहीं दाखिल करेगा। अब हम कितना बुरा समझते हैं शराबी को, कितना बुरा समझते हैं यतीम का माल खाने वाले को, लेकिन इसको नहीं बुरा समझते कि सूद खाना एक बुराई है, हैं? और फिर देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूद का 1 रुपया खाना 36 बार जिना करने से भी बदतर है, 36 टाइम्स जिना करने से। वो कोई जानी का पता चल जाए तो इंसान ने कहता है कि देखो ये तो जानी है, और 1 रुपया खाना। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन गुनाहों से बचो जो माफ नहीं किए जाएंगे, इसीलिए यहाँ पे फरमाया ना हुम फीहा खालिदून, हमेशा रहने वाले हैं इसमें, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इनकार किया ना, अल्लाह की एक हुक्म का इनकार, एक आयत का इनकार भी कुरान का इनकार है। तो फरमाया उन गुनाहों से बचो जो माफ नहीं किए जाएंगे, पहला है माले गनीमत की चोरी और दूसरा है सूद खाना। फिर एक और हदीस में आता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया किसी कौम में सूद के लेन देन का रिवाज हो जाए तो अल्लाह ताला इन पर जरूरियात जिंदगी की गरानी कर देता है, यानी महंगी हो जाती है जरूरियात जिंदगी। तो आज देखें जहां पे सूद का लेन देन का रिवाज है, जरूरियात जिंदगी कितनी महंगी हो गई, और जहां पे रेट ज्यादा है सूद का वहां पे उतनी ज्यादा महंगी। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लानत है, अल्लाह की लानत है सूद खाने वाले पे खिलाने वाले पे, यानी एक होता है ना लेने वाला और एक है देने वाला, तो यहां पे दोनों पे लानत है, लेने वाले पे भी देने वाले पे भी। नंबर थ्री लिखने वाले पे, जो लोग सूद को लिखते हैं, इंटरेस्ट लिखते हैं, चाहे वो बैंक में है चाहे वो कहीं है, लिखना इंटरेस्ट का। इसीलिए कोशिश करें कि अभी से के जिनके बच्चे किसी प्रोफेशन में जाना चाहते हैं तो ऐसे प्रोफेशन से बचें जहां पे सूद लिखा जाता है। और इसी तरह उन दोनों गवाहों पे भी अल्लाह की लानत है, जो गवाही देंगे ना उन पे भी। फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब बराबर हैं, हालांकि लिखने वाला तो सिर्फ हिसाब किताब कर रहा है, ना ले रहा है ना दे रहा है, गवाह जो है वो सिर्फ सिग्नेचर कर रहा है कि मैं विटनेस हूं। तो सबके ऊपर लानत है, और सोचें ये सारी वहीदें सबके लिए हैं क्योंकि सारे ही बराबर हैं। और देख लें कि जन्नत की झलक भी नहीं देखेगा क्योंकि वो तो आग में ही पड़ा रहेगा। यही काफी है किसी के लिए भी ये छोड़ने के लिए सूद के, कि वो असहाबुन नार है और हम फीहा खालिदून है। क्या जिसको जहन्नुम का यकीन है, कि जिसको कयामत का यकीन है, जिसको अल्लाह के फैसलों पे इस कुरान पे यकीन है, क्या वो ईमान लाने के बावजूद क्या फिर वो फिर भी इस चीज में पड़ा रह सकता है? नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बी श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين.
ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب خالدون.